दिन भर तारीख 1 अगस्त दिन मंगलवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। सेना की 90वीं सालगिरह पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दी चेतावनी, अतिक्रमण नहीं करेंगे बर्दाश्त। भारत प्रशासित कश्मीर में हुई एक मुठभेड़ में 2 चरमपंथियों की मौत, विरोध प्रदर्शन के दौरान 1 प्रदर्शनकारी की भी गई जान।
कामयाबी इसलिए बड़ी है क्योंकि अबु दुजाना और ये दूसरा काफी नोटोरियस किस्म के मिलिटेंट थे।
और बंटवारे के 70 साल के बाद मौजूदा हालात पर क्या सोचते हैं भारत और पाकिस्तान के इतिहासकार?
गांठ के नहीं खुलने के पीछे ऐतिहासिक वजूहात हैं।
हमारी तारीख है दोनों जानिब से, उस तारीख का भी बड़ा हिस्सा है हमारे।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि चीन अतिक्रमण करने वालों को मात देने के लिए तैयार है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 90वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में किसी खास सीमा विवाद का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन इन दिनों भूटान सीमा पर डोकलाम में भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने हैं और तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत का दावा है कि चीन भूटान की सीमा में घुसकर सड़क बना रहा है, इसलिए भारत ने वहां पर सैनिक भेजे हैं। वहीं चीन भारत से सेना वापस बुलाने के लिए कई बार कह चुका है। भारत प्रशासित कश्मीर में सेना ने लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर अबु दुजाना को मार गिराने का दावा किया है। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि अबु दुजाना और उसके एक साथी को पुलवामा में एक मुठभेड़ के दौरान गोली मार दी गई। इस खबर के सामने आने के बाद कश्मीर घाटी में कई जगह हिंसक प्रदर्शन हो गए। घाटी में फिलहाल मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अबु दुजाना की मौत भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व पेट्रोलियम मंत्री शाहिद खाकान अब्बासी वहां के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पिछले हफ्ते भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद शाहिद खाकान को अंतरिम मंत्री प्रधानमंत्री बनाया गया है। उन्हें आज पद की शपथ दिलाई जाएगी। सत्तारूढ़ पीएमएलएन पार्टी चाहती है कि नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन उन्हें इसके लिए नेशनल असेंबली का चुनाव जीतना होगा। शहबाज शरीफ फिलहाल पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। संसद में एक विशेष सत्र के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा,
क्योंकि सियासत मुल्क में एक गाली बन चुकी है, इसलिए आज इस ऐवान का सबसे बड़ा काम यह है कि अपनी इज्जत को बहाल करें। इस मुल्क का आईन, इसके मुताबिक मुल्क ने चलना है। अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, फौज हो, इंटेलिजेंस के दायरे हो, जुडिशरी हो, कारोबारी अजरात हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ये सब एक कश्ती में सवार हैं। मैं 45 दिन के लिए हूँ, 45 घंटे के लिए हूँ, मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, मैं सीट गर्म रखने नहीं आया।
ये थे शाहिद खाकान अब्बासी। चीन ने आधिकारिक तौर पर विदेश में अपने पहले सैन्य अड्डे की शुरुआत की है। अफ्रीकी देश जिबूती में चीनी सैन्य अड्डे की शुरुआत के समारोह में चीनी सैनिकों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अफ्रीका का छोटा सा देश जिबूती लगातार विदेशी सेनाओं का केंद्र रहा है। जिबूती में चीन के सैन्य अड्डे को लेकर कई तरह की चिंताएं जताई जा रही थी। चीन ने विदेश में अपने सैन्य विस्तार को लेकर की जा रही चिंताओं को खारिज कर दिया है। चीन का कहना है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ रक्षात्मक कार्रवाई के लिए किया जाएगा। तुर्की में पिछले साल के तख्तापलट की कोशिश के मामले में गिरफ्तार किए गए करीब 500 लोगों पर मुकदमा शुरू कर दिया गया है। राजधानी अंकारा में अदालत के बाहर भारी भीड़ देखी गई जब तख्तापलट की साजिश रचने के मामले में अभियुक्त बनाए गए 40 लोगों को अदालत में लाया गया। सरकार के समर्थकों और तख्तापलट की रात मारे गए लोगों के परिवार वालों ने संदिग्धों के साथ धक्का मुक्की की। कई लोगों पर गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चलाया जा रहा है। इनमें अमेरिका में रह रहे धार्मिक प्रचारक फेतुल्ला गुलेन भी शामिल हैं, जिन पर तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप है। उन्होंने इस आरोप से इनकार किया है। वेनेजुएला में खुफिया विभाग के अधिकारियों की हिरासत में लिए गए विपक्षी नेताओं को रोम वर्दे सैन्य जेल में भेज दिया गया है। विपक्ष के नेता लियोपोल्ड लोपेज और एंटोनियो लेडेज्मा के परिवार वालों ने उनकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जिम्मेदार ठहराया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा। दिन भर आप सुन रहे हैं रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी लाइव। दिन भर में आज बात करेंगे बिहार की राजनीति की, भारत प्रशासित कश्मीर और 70 साल पहले हुए भारत के बंटवारे की भी बात होगी, लेकिन शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बिना किसी देश का नाम लिए चेतावनी दी है कि चीन किसी भी अतिक्रमणकारी को परास्त करने के लिए तैयार है। शी जिनपिंग चीन की सेना की 90वीं सालगिरह के मौके पर बोल रहे थे। चीन का अपने कई पड़ोसी देशों के साथ सीमा के मसले पर विवाद है। साउथ चाइना सी में तनातनी है, ताइवान के साथ चीन के रिश्ते खराब हैं, जापान के साथ जिन द्वीपों पर चीन का विवाद है वहां भी चीन ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। इन सब के बीच चीन ने बीते हफ्ते भारतीय सैनिकों पर अपने क्षेत्र में दाखिल होने का आरोप लगाया था। भारत का कहना था कि उसने भूटान के क्षेत्र में चीन की सेना को नई सड़क बनाने से रोकने के लिए बीते महीने डोकलाम में सैनिकों को भेजा था। हम चीनी राष्ट्रपति के बयान के संकेत को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। शी जिनपिंग कह रहे थे कि चीन के लोग शांति पसंद करते हैं, हम कभी आक्रामक या विस्तारवादी नहीं होंगे, लेकिन हमें भरोसा है कि हम सभी तरह के अतिक्रमण को परास्त कर देंगे। हम किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल को चीन के किसी क्षेत्र को किसी भी तरह अलग नहीं करने देंगे। शी जिनपिंग का बयान आपने सुना, उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका संकेत किस तरफ है? मैंने चीन की राजधानी बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता से यही सवाल किया।
उनका जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा विस्तृत है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के लोग, पॉलिटिकल पार्टी और संस्था, कोई भी अगर हमारे मुल्क को तोड़ने की या विभाजन करने की कोशिश करती है तो उसे हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब पॉलिटिकल पार्टी का माने ये होता है कि ताइवान का रूलिंग पार्टी जो आजादी की तरफ जा रहा है, इस पर उनकी बहुत भयानक नाराजगी है, खास करके अमेरिका ने जो अभी अभी अस्त्र और एरोप्लेन बेचे हैं। और भारत के प्रति तो संकेत है ही है, क्योंकि डोकलाम का विषय अभी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि ये आदमी भी नहीं, ये नेता जिसका दबदबा इतना भयानक है कि माओसिंग से भी शायद बढ़कर है, उसे भी लोगों में जो चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में जो बातें आ रही है, उसका असर उन पर भी पड़ रहा है। क्योंकि लीडर को तो रिफ्लेक्ट करना ही पड़ेगा, खास करके जो पुराने मिलिट्री के लोग हैं और जो हॉकी सेक्शन है पार्टी के अंदर, वो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि इंडिया घुस गई है, तो आप कर क्यों नहीं रहे हैं, सिर्फ बोल क्यों रहे हैं। ये जो उनके ऊपर एक इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, कुछ लोगों ने तो साफ साफ कह भी दिया है कि हम असंतुष्ट हैं सरकार के इस रवैया से, उसका असर तो प्रेसिडेंट पर भी पड़ रहा है।
यानी जो दबाव उनके ऊपर चारों तरफ से पड़ रहा है उसके लिए इनका ये रिएक्शन है, कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है।
दो बातें हैं, एक तो दबाव उन पर पड़ रहा है उसका रिएक्शन, लेकिन हम लोगों को भी दबाव को बढ़ा चढ़ा के नहीं देखना चाहिए, इसलिए कि पहले तो दबाव बड़ा नहीं है। 1 से 50 जो ट्रेंडिंग स्टोरीज हैं उसमें से आज भी 2 महीना में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, 1 मिनट के लिए ऐसा नहीं हुआ कि टॉप 50 स्टोरीज के अंदर ये विषय आया हो सोशल मीडिया की चर्चा में। मिलिट्री के जो पुराने लोग हैं वो इस चर्चा को उठाने में लगे हुए हैं और वो बहुत माने रखती है कम्युनिस्ट पार्टी के।
ये जो ताजा बयान है, इसे लेकर जो भारत और चीन के रिश्ते हैं, आप इन रिश्तों को किधर जाते हुए देख रहे हैं?
बहुत सीधा हिसाब है कि अजीत धोवल का जो विजिट था और उन्हें जो भी क्लोज डोर में ऑफर किया होगा चीन को, वो चीन को स्वीकार नहीं है। एक दूसरा, ये बयान से ये मतलब होता है कि उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस किया होगा उस परिस्थिति का। अगर आप दुनिया के सामने अपने आप को मजबूत जताते हैं तो मजबूत आदमी की सबसे बड़ी परेशानी ये होता है कि वो फिर हार सहन नहीं कर पाएगा। उसने एनालिसिस करके देखा होगा कि यहाँ हार की संभावना कम है। और तीसरी बात, हमें ज्यादा चकित नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये 90 वर्षगांठ है उनके मिलिट्री का, और मिलिट्री के सामने उसका कमांडर तो ऐसा ही कहेगा। हमारे जनरल बिपिन रावत कैसी बात करते हैं, हम 2.5 फ्रंट पे लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो ये तो मिलिट्री के जो कमांडर है उसका काम है ये कहना, उसे तो मॉरल बढ़ाना है अपने सोल्जर्स का, तो हमें इस पर घबराना भी नहीं चाहिए।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
रुख भारत का करते हैं। भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में हुई एक मुठभेड़ में लश्कर के एक कमांडर समेत दो चरमपंथियों की मौत हो गई। इसके बाद हुए प्रदर्शनों के दौरान एक प्रदर्शनकारी की भी मौत हो गई। पूरे मामले पर एक रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
दक्षिणी कश्मीर के जिला पुलवामा के हाकरीपोरा में लश्कर ए तैयबा का एक सक्रिय कमांडर अबू दुजाना और उनके दूसरे साथी को सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में मारने का दावा करते हुए कहा है कि अबू दुजाना की मौत सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पुलिस का कहना था कि अबू दुजाना बीते वर्षों में सुरक्षा बलों पर किए गए कई हमलों में शामिल रहा है। अबू दुजाना पर 10 लाख का इनाम भी रखा गया था। पुलिस ने एक सूचना के आधार पर हाकरीपोरा इलाके को सोमवार सुबह को ही घेर लिया था, जहां उन्हें अबू दुजाना की एक रिहायशी मकान में मौजूदगी की सूचना मिली थी। इलाके को घेरने के बाद इलाके में छुपे चरमपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलियों का तबादला शुरू हुआ और बहुत ही कम समय में अबू दुजाना की मुठभेड़ में मौत हो गई। मारे गए चरमपंथियों से पुलिस ने गोला बारूद भी बरामद करने का दावा किया है। कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुनीर खान ने बताया, इलाके में मुठभेड़ शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर मारे और एनकाउंटर साइट की तरफ मार्च करने की कोशिश की,
जिसमें दो मिलिटेंट मारे गए, एक अबू दुजाना और दूसरा आरिफ ललिहार, और उनसे दो वेपन और साथ में मैगजीन्स ग्रेनेड वगैरह रिकवर हुए। कामयाबी इसलिए ये बड़ी है क्योंकि अबू दुजाना और ये दूसरा काफी नोटोरियस किस्म के मिलिटेंट थे और काफी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ और उधमपुर एक्शन में और काफी एक दो सिविलियन किलिंग्स भी उन्होंने अंजाम दी और इलाके में एक दहशत फैलाई थी, तो उस लिहाज से इनका न्यूट्रलाइज होना काफी मायने रखता है।
इस बीच इलाके के युवाओं और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई, जिन झड़पों में कई लोग घायल बताए जाते हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने गोली चलाई, जिसमें फिरदौस अहमद नाम के एक नागरिक की मौत हो गई है। तहां पुलिस का कहना है कि फिरदौस क्रॉस फायरिंग में मारा गया। अबू दुजाने की मौत की खबर फैलने के साथ ही प्रशासन ने कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया है। अलगाववादियों ने आम नागरिकों की मौतों के खिलाफ कल कश्मीर बंद बुलाया है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
आगे बढ़ते हैं। मुंबई में CBI की एक विशेष अदालत ने साल 2005 के सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में गुजरात के पूर्व पुलिस अधिकारी DG वंजारा और राजस्थान पुलिस के अधिकारी MN दिनेश को बरी कर दिया है। फैसला आने के बाद हमारे सहयोगी विनीत खरे ने वंजारा से बात की और उनकी प्रतिक्रिया ली।
इसके बारे में मेरा पहला रिएक्शन तो ये है कि मैं ईश्वर का खूब खूब आभारी हूँ और बाकी तो ये हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है, ये जो न्यायतंत्र है, न्यायपालिका है, इन्होंने हमारे साथ न्याय किया है और इसके लिए जुडिशरी के भी खूब खूब आभारी है। कहा जाता है कि भगवान के वहाँ देर होता है, अंधेर नहीं होता है। ऐसी तरह से ये देश का जो न्यायतंत्र है, वहाँ भी देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है।
CBI की विशेष अदालत ने क्या कहा है और ये पूरा मामला क्या है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने अहमदाबाद में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार अजय उमट से बात की।
देखिए, आज मुंबई की जो स्पेशल CBI कोर्ट है, DG वंजारा जो गुजरात के सीनियर IPS ऑफिसर थे, उनको और राजस्थान के जो अभी एडिशनल DGP है मिस्टर दिनेश MN, जो राजस्थान में अभी फिलहाल एक एनकाउंटर हुआ था उसमें भी उनका सुपरविजन था, उन दोनों को बरी कर दिया है। तो इससे क्या है कि 2005 नवंबर में सोहराबुद्दीन करके जो एक गैंगस्टर था, जो गुजरात पुलिस को उस वक्त लगा था दैट ही हैज लिंक विद लश्कर ए तैयबा और पाकिस्तान के साथ उसके तार जुड़े हुए हैं, और उसने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में कई जगह उसने वेपन सप्लाई किए थे, तो उसका जो मॉड्यूल था उसको उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी और इवेंचुअली उसमें सोहराबुद्दीन का नवंबर 2005 में अहमदाबाद के पास एयरपोर्ट के पीछे एनकाउंटर कर दिया गया था। बाद में इस केस में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को तहकीकात करने के लिए कहा और अभी जो गुजरात की DGP है मैडम गीता जौहरी, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि ये फेक एनकाउंटर है और तब गुजरात पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके कहा था कि ये फेक एनकाउंटर है। उसके बेसिस पे गुजरात पुलिस ने दिनेश MN, DG वंजारा और राजकुमार पांडेन करके तीन अफसरों को पकड़ा था और उसके बाद गुजरात के काफी छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर्स की अरेस्ट हुई थी। काफी लोग इस केस में छूट गए हैं। CBI को जो एविडेंस जुटाने चाहिए थे वो CBI नहीं पेश कर पाई।
लेकिन सर, जिन पुलिस अधिकारियों पर, जो छोटे स्तर के पुलिस अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर लेवल के, जिन पर गोली मारने के आरोप हैं, उनको बड़ी अदालत ने नहीं किया है, तो अभी भी अदालत ये तो मान ही रही है कि ये फर्जी एनकाउंटर का मामला है।
डेफिनेटली देखो, ये हकीकत है कि ये फर्जी एनकाउंटर था। गुजरात की पुलिस ने ये सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि ये फर्जी एनकाउंटर है, बावजूद इसके कि ये हु किल्ड सोहराबुद्दीन और कौसर बी और तुलसी एमएन, ये चीज जो है, ये लिंक जो है वो एस्टेब्लिश करने में सीबीआई फेल हुई है। तो जाहिर है कि कत्ल तो हुआ था, गोली भी चली थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट को ये केस मॉनिटरिंग करने के लिए भी दिया था और उसके लिए 3 पुलिस अफसरों की टीम भी बनाई थी, लेकिन ये जो कानूनी प्रक्रिया है वो काफी लंबी चली और उसमें योगानुयोग यह है कि अब जगह एनडीए की सरकार आ गई है, तो सीबीआई जो है उसका भी शायद कुछ रवैया बदल गया है इस केस के प्रति। और फाइनल यही है कि जजमेंट ये आया है कि मिस्टर बंजारा और दिनेश एमएन जो है बरी हो गए इस केस से।
जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अजय उमट।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब रुख बिहार का और बाद बिहार की राजनीति की। बिहार के सियासी मंच पर नेता अपने तरकश से विरोधियों पर लगातार तीर बरसा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पुराने साथियों पर निशाना साधा, तो आज राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव ने उन्हें जवाब दिया। सुनिए पटना से नीरज साहे की ये रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की तारीफ के साथ भाजपा के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खुलकर आने से बौखलाए राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने मंगलवार को नीतीश कुमार की तीखी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के आगे सरेंडर कर गए हैं।
बताए 2019 का आपके बिहार की जनता से अपील करते हैं कि 2019 का भी कह दिया जाए, जयकारा कर दिया कि नरेंद्र मोदी का कोई चैलेंज नहीं है। ये तो मिला हुआ था शुरू से, ये तो बहाना था तेजस्वी को, केस का बहाना था। तेजस्वी इस्तीफा कर दिया रहता तो नहीं जाता क्या? तेजस्वी इस्तीफा कर देता तो नहीं जाता, ये तो सब मैच फिक्स था। मैं नहीं कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, वहाँ प्रेस के लोगों ने जब पूछा कि भाई आप पार्टियों को सब तोड़ रहे हैं नेताओं को, तो बोला कि नहीं, नीतीश कुमार तोड़ा है, नीतीश तोड़ के मेरे पास आया।
नीतीश कुमार ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि देश में उनके मुकाबले का कोई नेता नहीं है।
कोई दूसरा नहीं काबिज हो सकता, मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं।
नीतीश कुमार ने कल लालू प्रसाद के इस आरोप का खंडन किया था कि उन्होंने उनको नेता बनाया था। लालू प्रसाद ने उनकी इस बात का भी जवाब दिया और कहा कि
और कल वो बोल रहे थे कि लालू यादव को नेता हमने बनाया, थोड़ा सा शर्म भी नहीं आती है बोलते हुए। यहाँ चंदन लगवा के जाते थे बड़े भाई से, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि छात्र आंदोलन हमने खड़ा किया था यहाँ, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में यह लड़ाई संपूर्ण क्रांति का लड़ाई के रूप में परिणित हुआ। गांधी मैदान में जहाँ कहीं विजिबल भी नहीं थे नीतीश कुमार छात्र नेता के रूप में, जयप्रकाश बाबू चले गए थे कहीं विश्राम में, और उन्होंने छात्र संघर्ष समिति नया का अपने कलम से हमको कन्वेनर बनाया। यह मेरा सौभाग्य है, सौभाग्य था कि जयप्रकाश जी के द्वारा मुझे छात्र संघर्ष संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया।
इस बीच पटना हाई कोर्ट ने भाजपा जदयू सरकार के गठन की प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। उधर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मिट्टी घोटाले की दोबारा जांच कराने की घोषणा कर दी है। जाहिर है आने वाले दिनों में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच आरोप प्रत्यारोप में तल्खी बढ़ेगी। नीरज सहाय, बीबीसी पटना।
आपने कई तरह के मेले देखे होंगे, कई अनोखे मेलों के बारे में सुना भी होगा, लेकिन क्या सांपों के मेले के बारे में सुना है? बिहार के समस्तीपुर में ऐसा एक मेला लगता है जिसमें हजारों लोग सांपों को हाथों में तामे नदी किनारे आ जाते हैं। इस मेले के बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं सीटू तिवारी अपनी इस रिपोर्ट में।
हम लोग को नाग मेला अच्छा लगता है, जो सब सांप रख के उठाते हैं और गला में डालते हैं, वो हमको अच्छा लगता है।
तो तुमने कभी सांप डाला है अपने गले में?
हाँ।
कैसा लगता है सांप छूने में?
मुलायम लगता है।
ये आवाज है 9 साल के अंकित की। अंकित ही नहीं बल्कि बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड में रहने वाले ज्यादातर बच्चों की यही कहानी है। सांप और नाग का नाम सुनकर ही उनकी आंखें चमक उठती हैं और ढेरों किस्से जुबां पर आने के लिए उतावले हो उठते हैं। न माथे पर कोई शिकन, न डर, बस थोड़ा शर्माते हैं और बताते हैं कि इस बार मेले में उन्होंने सांप को पकड़ के फोटो खिंचाई थी।
नाग मेला हम लोग को अच्छा लगता है, उसमें जो सांप सबको रखा जाता है उसके लिए उसमें पूजा करना पड़ता है, उसी लिए रखा जाता है।
दरअसल समस्तीपुर में हर साल नाग पंचमी के मौके पर सांपों का मेला लगता है। जहाँ कहीं भी भगवती स्थान है वहाँ लोग सांप मेला का आयोजन करते हैं। 60 साल के महेंद्र पासवान बीते 45 साल से बेला नरहन पंचायत स्थित भगवती स्थान का काम संभाल रहे हैं।
भगवती के सेवक हैं, जागरण कर कर और नदी चलते हैं, नदी जाकर जैसे जैसे सब आदमी के लेकर जाते हैं, नदी से निकल कर सांप लेकर लौटते हैं, लौट कर और जाकर जैसे जा फिर जंगल में छोड़ते हैं।
मेला लगने से एक महीने पहले ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। स्थानीय लोग सांप को पकड़कर घरों में रखना शुरू कर देते हैं। नाग पंचमी के दिन ये लोग विषैले सांप और नाग हाथ में उठाकर ढोल नगाड़ों के शोर के बीच जुलूस निकालते हैं। क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी के हाथ में सांप खिलौने जैसा लगता है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि आज तक सांप और नाग के इस जुलूस में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लोगों से आपसी बातचीत में पता चलता है कि सांप और नाग का विष भगत लोग निकाल देते हैं।
विष निकाल दिया जाता है, ऑपरेशन नहीं किया जाता। युग परिवर्तन के कारण बहुत सा ऐसा मशीन है जो उससे पकड़ा जाता है, उसे हम लोग मतलब चलते हुए भी पकड़ लेते हैं।
वहीं अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार भी बताते हैं कि बीते 4 साल की उनकी पोस्टिंग के दौरान मेले के वक्त किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है।
आज तक हम पिछले 4 वर्षों से हैं, ग्रेस ऑफ गॉड, आज तक इस तरह की चीजें नहीं।
दिलचस्प है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी, चंदे और जातीय भेदभाव से परे आयोजित होने वाला यह मेला कितना पुराना है इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। सिंघिया घाट की 90 वर्षीय महतारी देवी कहती हैं कि मेला 100 साल से लग रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मेला 300 साल पुराना है। वहीं स्थानीय पत्रकार चंदन राय कहते हैं कि 1600 ईस्वी में राजा राय गंगा राम ने इस मेले की शुरुआत की थी। नाग मेला बड़ों के लिए धार्मिक मान्यता है, युवाओं और बच्चों के लिए रोमांच है, लेकिन 7वीं में पढ़ने वाली अंशु को ये मेला अच्छा नहीं लगता।
नागों को पकड़ना अच्छा बात नहीं होता है, वो अगर वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें, जहरीली गैसें बहुत छूटने लगती है।
समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड से सीतू तिवारी, BBC।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
आज से 70 साल पहले भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बन गए, लेकिन इससे सवाल सुलझे नहीं बल्कि और उलझते चले गए। 7 दशकों में भारत और पाकिस्तान जंग के मैदान में भी आमने सामने हुए, अब भी रिश्ते तल्ख हैं। मैंने अब से थोड़ी देर पहले जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर और इतिहास के जानकार डॉक्टर रिजवान कैसर और पाकिस्तान के जाने माने इतिहासकार मुबारक अली से बात की और सबसे पहले डॉक्टर रिजवान से सवाल किया कि रिश्तों की ये गांठ खुलती क्यों नहीं।
उसकी वजह यह कि जब जब हम उस गांठ को याद करते हैं या तो अपनी सियासत को और ज़्यादा चमका लेते हैं और इतिहास के मुद्दे को वर्तमान तात्कालिक राजनीति में हम उसको मुद्दा बना देते हैं। और वैसे लगता है कि जो 47 में समुदायों के बीच जो बिटरनेस आई थी, वो बिटरनेस अगर अभी आ जाती है तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन के सियासत को भी मदद मिल जाती है।
दोनों तरफ आप ये कहना चाह रहे हैं?
बिल्कुल दोनों तरफ, इसलिए कि उधर की तरफ अगर आप उठा करके देखें तो पूरे पाकिस्तानी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का जो रैशनल बनता है वो किसी और तरफ नहीं निगाह जाती है, हिंदुस्तान की तरफ निगाह आती है
जी।
हमारी आर्मी की भी निगाह पूर्व की तरफ कम जाती है, उत्तर की तरफ ज्यादा जाती है, लेकिन पूर्व वाली बात हमारी सियासत को मजबूती नहीं देता है तो हम
उस तरफ देखते हैं,
पश्चिम की तरफ जो है देखते हैं तो सियासत को गर्माई मिलती है।
मुबारक अली साहब, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा इस चर्चा में, क्या केवल सियासत में इतना दम है कि वो दो मुल्कों को कंट्रोल कर सके, तल्खी खत्म ना हो पाए?
पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की जो सियासी पार्टियां हैं, मतलब जमहूरियत का एक जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जमहूरियत में वोट लेने के लिए लोगों को इश्तेहार जो है दिलाया जाता है, नफरत दिलाई जाती है ताकि उनसे वोट लिए जा सकें। ये पाकिस्तान में भी हो रहा है और हिंदुस्तान के अंदर भी हो रहा है, और उसकी वजह से दोनों मुल्कों के अवाम के अंदर भी कितनी नफरतें जो है वो आ जाती है।
मैं मुबारक अली साहब एक बात और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इतिहासकार हैं, 70 साल बंटवारे के हो गए, एक इतिहासकार के तौर पर आप क्या कुछ कहेंगे?
अच्छा, मैं सिर्फ कहूंगा, देखिए हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती के लिए हर सतह के ऊपर, और एक जमाना था कि यहाँ पर बहुत अच्छे ताल्लुकात हो रहे थे, तालबिल आ रहे थे, असातिज़ा यहाँ पर आ रहे थे, दानिश्वर आ रहे थे, कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, बहुत अच्छा माहौल था, और वो ऐसा माहौल था कि अगर वो जारी रहता तो मैं समझता हूँ कि अब तक हम बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे हो जाते
हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि रिजवान साहब यहाँ बैठे हैं, मुबारक अली साहब आप वहाँ से जुड़े हुए हैं, क्या आप दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं?
जी, मैं रिजवान साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जरा देखिए, हमें मिलके ये जो तारीख का एक हमारे पे बोझ है दोनों मुल्कों पर, जो एक नफरत फैलाती है, और खासतौर से निसाबी किताबें जो हैं, इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक जरिया है। हम नहीं कहते कि मुकम्मल कामयाबी होगी, लेकिन एक जरिया है, अदब के जरिए से, शायरी के जरिए से, मौसीकी के जरिए से, इन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम जो सियासतदान नफरत फैला रहे हैं उनका मुकाबला कर सकें।
जी रिजवान साहब, एक आखिरी कमेंट।
अगर हम सिर्फ ये मान लें कि जो एक वाकया हो गया 47 में हो गया, अब उसका कोई सियासी इम्पोर्टेंस, कोई इसी तरह की सियासी अहमियत ना बने उसकी, मुझे ऐसा लगता है कि एक पहली शर्त होगी अवाम के लेवल पर और सरकार के लेवल पर रिश्ते को अस्तवार करने के लिए।
आप दोनों के हाथ में अगर मौका हो तो आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे?
सबसे तो पहली बात ये कहूँगा अपनी तरफ से कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अगर मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि पूरे नेशनल लेवल पर दोनों मुल्कों में इतनी सिनर्जी पैदा हो जाएगी कि दुनिया भी किसी भी ताकत का हम मुकाबला कर सकते हैं। जो हमारी ज़मीन है, जो उसकी उपजाऊ है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी कुव्वत है, जो हमारा एक इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है, इन सब का इस्तेमाल करके हम एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं, मौजूदा अपने मौजूदा वक्त की आबादी को वो तमाम सारी सहूलतें दे सकते हैं जो अब तक नहीं मिल पाई है। हमारी प्रायोरिटीज़ वार टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के बजाय ह्यूमन रिसोर्स को, इंसानी ज़िंदगी को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को आगे बढ़ाने में लग जाए। बॉर्डर हमारे बने रहें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस बॉर्डर का हम किसी भी तरह सियासी इस्तेमाल ना करें,
सियासी इस्तेमाल ना करें,
मुबारक एनर्जी सिनर्जी दोनों पैदा कर सकते
जी
हैं।
मुबारक अली साहब
जी, बिल्कुल, मेरा जो दिली आरज़ू जो है वो ये है कि हम रियासतों को छोड़ के कोशिश करें कि दोनों मुल्कों के अवाम के अंदर एक दूसरे की सूझबूझ होनी चाहिए, उनको एहसास होना चाहिए कि हम किस तरीके से आपस में मिलकर मुत्तहिद होकर हम एक पुरमसर्रत खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इसके लिए मेरा जो अपना भी ख्याल है कि जो हमारी सियासी जमातें हैं उनको भी हमें इसी रास्ते पर लाना चाहिए, और मैं सबसे ज़्यादा जो जोर देना चाहता हूँ वो ये है कि नौजवानों में और तालबिलों के दरमियान दोनों मुल्कों के इनके बाहमी एक्सचेंज जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं मिलेंगे उस वक्त तक मतलब कि इनके जड़ों के अंदर जो फर्क मौजूद है वो दूर नहीं होगा।
बहुत शुक्रिया सर, आप साथ जुड़े, आपने बात रखी, थैंक यू।
बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू,
फिर मुलाकात होगी। मुबारक अली साहब,
हम अपने श्रोताओं को बता दें कि बीबीसी हिंदी और उर्दू बंटवारे के 70 साल पर खास सीरीज कर रहे हैं। आप इस दौरान bbchindi.com पर लगातार विशेष रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और रेडियो पर खास रिपोर्ट सुन सकते हैं। वक्त आपसे विदा लेने का है, लेकिन मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि चीन अतिक्रमण करने वालों को मात देने के लिए तैयार है। भारत प्रशासित कश्मीर में सेना ने लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर अबू दुजाना को मार गिराने का दावा किया है। इसे भारतीय सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व पेट्रोलियम मंत्री शाहिद खाकान अब्बासी नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। चीन ने आधिकारिक तौर पर अफ्रीकी देश जिबूटी में अपना पहला सैन्य अड्डा की शुरुआत की है। तुर्की में पिछले साल के तख्तापलट की कोशिश के मामले में गिरफ्तार किए गए करीब 500 लोगों पर मुकदमा शुरू किया गया है। अंकारा में अदालत के बाहर भारी हंगामा हुआ है। वेनेजुएला में खुफिया विभाग के अधिकारियों की हिरासत में लिए गए विपक्षी नेताओं को काराकास की सैन्य जेल में भेज दिया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को में एक क्षेत्रीय अदालत में गोलीबारी में 3 अभियुक्तों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।